पिछले अध्याय में आपने देखा कि आर्यन ने सानवी को फिल्म देखने के लिए रुकने को कहा और वो मान गई। अयान अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान वहां मौजूद किसी और चीज पर नहीं बल्कि सामने बैठी जोया पर अटक गया था। जोया के चेहरे में कुछ था जो उसका दिल उसकी ही कंट्रोल से बाहर हो रहा था। अयान की नजरें जया के चेहरे पर ठहर गईं। उसे जया की हर अदा, हर बात और उसकी हर छोटी सी चीज दिल को छू जाने वाली लग रही थी। जया, जो अब तक चाय के कप में नजरें गड़ाए बैठी थी, धीरे धीरे बेचैन होने लगी। सारा ने एक पल के लिए अयान की आंखों का पीछा किया और देखा कि वो सीधा जोया को देख रहा है। अयान को शायद इस बात का होश भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। जोया ने कप से आखिरी घूंट लिया और मेज पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। उसने नजरें उठाईं, बस एक सेकंड के लिए, और अयान की आंखों में देख लिया। जया ने जल्दी जल्दी से चाय का कप खत्म किया और वो वहां से जल्दी से निकल गई। वो अयान की नजरों से बचना चाहती थी। अपने कमरे में पहुंचकर वो सीधे बिस्तर पर बैठ गई। अयान जया के बारे में सोच रहा था और जया अयान के बारे में। अयान की जो हरकतें अतीत में हो चुकी थीं, जया उन्हें कभी माफ करने वाली नहीं थी। टहलने के बाद जोया लिविंग रूम में आई और अपने कमरे में जाने लगी। सारा ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली कि सब उसका इंतजार कर रहे हैं, और जया सारा के साथ ही लिविंग रूम में जाकर बैठ गई। सारा को पक्का यकीन था कि चाचू के दिल में जोया फूफी के लिए फीलिंग्स हैं। नावेद साहब ने सबको बताया कि दो दिन बाद सुधीर की सगाई है। नाउ नेक्स्ट, तो फिर ठीक है ना, चलते हैं, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, जुबैल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी सहमत हूँ, एक हफ्ते के लिए जयपुर घूमेंगे, शादी का मजा भी करेंगे। सारा ने भी अपने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई। सोचो तो सही, बच्चों की बात ठीक है, पूरी फैमिली चलते हैं, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा एंजॉय, जुबेर के डैड आरिफ साहब ने भी हामी भरी। नावेद साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा करो, तुम सब लोग चले जाओ, हम शादी के दिन आ जाएंगे। मैं और तुम्हारी अम्मी इतने दिन बाहर नहीं रह सकते, सेहत इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल सही बात है, सबने सहमति में सिर हिलाया। घर का माहौल इन दिनों फिर से खुशनुमा हो रहा था और सबको लगता था कि बच्चों के साथ रहना चाहिए। खैर, मैं यहीं रहूंगी, कॉलेज की क्लासेस हैं और शादी में नहीं जा पाऊंगी, जोया ने कहा। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा कि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है और किसी की मजबूरी बनना उसे पसंद नहीं था। क्या कह रही हो, सब साथ में चलते हैं ना, सारा ने नरम लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, आप भी चलिए हमारे साथ, जारा ने भी जोड़ा। कोई बात नहीं, मैं शादी के दिन पहुंच जाऊंगी, जोया ने आखिरकार सभी के कहने पर हामी भर दी। मेरी तो सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं शादी पर जा सकूं, अयान ने कहा। मुझे वैसे भी रेस्ट करना चाहिए और घर पर ही खाना खाना है तो यहीं रहूंगा। दो दिन बाद सभी का जयपुर जाने का प्रोग्राम पक्का हो गया। मेहरा खानदान में जयपुर जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। घर के बेटे की सगाई और शादी थी, इसीलिए पूरी फैमिली एक दिन पहले ही रवाना होने वाली थी। वेद की माँ वेदिका के मन में बस एक ही चिंता थी, कहीं कोई लड़की उसके बेटे के लिए मुसीबत न बन जाए। उसे लग रहा था कि कोई ना कोई बड़ी समस्या आने वाली है। दूसरी तरफ वेद अपने ही ख्यालों में उलझा था, मानवी का अचानक उसे छोड़कर चले जाना और ये एहसास कि उसने सिर्फ एक बार मना किया और वो चली गई, ये बात उसे भीतर तक चुभ रही थी। पंडित जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वेद पर कोई खतरा मंडरा रहा है, ये बात वेदिका के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और शादी की तैयारियों के बीच भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। बलवंत मेहरा ने वेदिका को समझाने की पूरी कोशिश की। अरे, मैं अपने बेटे पर पूरी नजर रख रहा हूँ, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा, लेकिन एक माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चे के लिए डरता है। आखिरकार सभी लोग सगाई से एक दिन पहले जयपुर के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट दोपहर की थी और वे लोग लगभग 3-4 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतर गए। इस बार पूरी फैमिली साथ थी, बस एक दो लोग ही काम की वजह से पीछे रह गए थे। उनका प्लान था कि रात को अच्छे से आराम करेंगे ताकि अगले दिन की शाम की सगाई के लिए तैयार रहें। लड़की वाले दिल्ली में रहते थे, लेकिन उनकी जड़ें राजस्थान की थीं। उनके पास राजस्थान में एक पुरानी हवेली थी, बल्कि हवेली क्या, वो तो किसी छोटे महल से कम नहीं थी। राजवीर सिंह शेखावत इस परिवार के मुखिया थे। इस शादी की लड़की वाले असल में राजस्थान के पुराने राजघराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पिछली 2-3 पीढ़ियों में उन्होंने अपनी जिंदगी का रुख बदल लिया था। करीब 50 साल पहले परिवार के मुखिया राजवीर सिंह राठौर दिल्ली आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट, टेक्सटाइल और होटल बिजनेस में हाथ आजमाया। उनकी दूरदर्शिता और बिजनेस दिमाग ने उन्हें दिल्ली के बड़े बिजनेस घरानों में जगह दिला दी। दिल्ली में उनका बंगला साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में था, जहां राजनीति, इंडस्ट्री और फिल्म जगत के बड़े लोग अक्सर आते जाते रहते थे। लेकिन हर बड़े मौके और पारिवारिक कार्यक्रम के लिए वे अब भी जयपुर की अपनी पुरानी हवेली का रुख करते थे, क्योंकि वहां उनका असली शाही ठाट महसूस होता था।
कहते हैं उनके खानदान के पुरखे किसी पुराने राजघराने से जुड़े हुए थे। ये छोटा महल करीब 200 साल पुराना था, जिसे बाद में नए लुक में रेनोवेट किया गया था। अब ये एक हेरिटेज होटल के तौर पर चलाया जाता था, लेकिन चूंकि इस बार शादी उनके घर की थी, उन्होंने पूरे होटल को मेहमानों के लिए खाली करवा दिया था। इस हवेली की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि यहां कभी एक राजकुमारी की रहस्यमय मौत हुई थी और आज भी उसके कदमों की आहट हवेली के पिछवाड़े वाले हिस्से में सुनी जा सकती है। पुराने नौकर चुपचाप बताते थे कि हवेली का नील दरवाजा सूर्यास्त के बाद कभी नहीं खोला जाता, क्योंकि वहां एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला रहता है। हालांकि लड़की वालों ने इन बातों को हमेशा अफवाह बताया, लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, महल चाहे जितना सुंदर हो, उसकी दीवारों में इतिहास की परछाइयां हमेशा रहती हैं। और इस बार शादी का प्रोग्राम इसी हवेली में था। जयपुर एयरपोर्ट से हवेली तक का रास्ता करीब आधे घंटे का था। शाम ढलने लगी थी और आसमान सुनहरी गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। गाड़ियों का काफिला मुख्य सड़क छोड़कर एक पतली पक्की सड़क पर मुड़ गया, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची हवेलियां और पुराने पेड़ खड़े थे। थोड़ी ही देर में सामने वो नजारा आया जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, लड़की वालों का छोटा महल। मुख्य गेट इतना ऊंचा था कि जैसे किसी किले का दरवाजा हो। भारी पीतल की चादर से मढ़े दरवाजे पर हाथियों और मोरों की नक्काशी थी और दोनों तरफ ऊंचे कंगूरों पर कलश चमक रहे थे। गेट पर खड़े दो पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा वाले गार्ड हाय छोड़कर खड़े थे। जैसे ही गेट खुला, गाड़ियों का काफिला अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले नजर पड़ी मुख्य आंगन पर, बीच में संगमरमर का फव्वारा जिसके चारों ओर ताजे गेंदा और गुलाब के फूल बिखरे थे। आंगन के चारों तरफ लाल बलुआ पत्थर के खंभों वाला बरामदा था, जिन पर महीन नक्काशी की गई थी। गाड़ियों से उतरते ही हल्की सी ठंडक ने सबको घेर लिया, संगमरमर के फर्श की ठंडक और हवा में घुली इत्र की खुशबू। जैसे ही मेहरा खानदान लॉबी में पहुंचा, लड़की वालों की तरफ से महिलाएं और नौकरानियां आ गईं, जिन्होंने थाल में कुमकुम और फूल रखे थे। पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत हुआ, तिलक, आरती और ढोल नगाड़ों की धीमी थाप। बलवंत मेहरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। महल की भव्यता वाकई देखने लायक थी। हर कोना किसी कहानी का हिस्सा लगता था, मगर वो थोड़ा चुपचाप था। असल में ये शादी पूरी तरह से रमेश मेहरा की मर्जी थी। रमेश मेहरा अपने बड़े बेटे वेदांत का रिश्ता किसी बड़ी बिजनेस फैमिली में नहीं करा पाया था। हालात ऐसे बने कि उसे वेदांत की शादी रीना से करनी पड़ी, लेकिन इस बार उसने बड़ा दांव खेला था। वो चाहता था कि इस रिश्ते के जरिए उसकी ताकत बलवंत मेहरा से बढ़ जाए।
सुधीर ने शादी के लिए साफ मना कर दिया था। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी एक नहीं चली। वैसे भी वो स्वभाव से अपने पिता रमेश मेहरा और अपने भाई वेदांत मेहरा से बिल्कुल अलग था।